दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ।
एरिक भाई, हेलो लुसियाना बहन, ओम शांति। आपका दृष्टि से सृष्टि में स्वागत है लुसियाना बहन। हेलो एरिक, आपका साथ सुखकारक है। ओम शांति एरिक भाई, आपका स्वागत है। आप जानते हो लुसियाना बहन, मैं एक विचित्र प्रश्न पूछकर शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश पाश्चिमात्य लोग कदाचित भी के नहीं परंतु गैर भी के समझते हैं कि ब्राजील में स्वर्ग है कभी कभी, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सूरज और खूबसूरती और आराम का देश है। लुसियाना बहन, इन दिनों हम बहुत से संकटों का सामना कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अब वह स्वर्ग कोई है। अरे भाई ठीक है, तो आप हमें असली स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार है लुसियाना बहन? हाँ जी एरिक भाई, ठीक है। आप जानते हैं कि यह अच्छा होता है शायद कि हम शुरुआत करते हैं एक ज्यादा व्यक्तिगत प्रस्ताव से कि आप कब और कैसे ज्ञान में आए और संगम युग की आपकी कल्पना और समझ को आपने कैसे विकसित किया। क्या आपके पास कोई व्यक्तिगत सार संदेश या अनुभव है या कोई ऐसी टिकट है स्वर्णिम युग के लिए लुसियाना बहन? अच्छा, मुझे कोई ट्रांस या दृष्टांत नहीं हुआ, परंतु मैं जब बाबा के संपर्क में आई तब तकरीबन 37 वर्ष पहले हुआ था, तब स्वर्णिम युग की कल्पना ने मुझे बहुत मोहित कर दिया था। मुझे लगता है कि क्योंकि ऐसी एक आत्मा होने के नाते जिसने सत्यता का अनुभव किया है, मुझे हमेशा एक परिपूर्ण दुनिया की अभिलाषा रही है जिसमें परिपूर्ण सामाजिक संरचना हो, उत्तम संबंध हो। मैं हठयोग के साथ साथ उत्कट भक्ति भी करती थी। मैंने हिंदू पौराणिक कथाओं का अभ्यास किया और कृष्ण के लिए मुझे इतना प्यार था कि उनका चित्र मेरे कमरे में लगाया हुआ था। इसलिए स्वर्णिम युग के बारे में पारंपरिक विचारों को अपनाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। भारतीय संदर्भ में स्वर्णिम युग के वर्णन में महल, गहने, उत्सव मुझे तब स्पष्ट हुए जब मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था एक राजकुमारी की यादगार। मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में कभी सुना हो, परंतु यह एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। इसको महारानी गायत्री देवी ने लिखा था। वह उस समय जयपुर की महारानी थी और जयपुर सबसे धनाढ्य साम्राज्यों में से था। अपने किताब में उन्होंने अपने जीवन के बारे में वर्णन किया, उनकी जीवन शैली क्या थी और उनकी छुट्टियों, उनकी पार्टियों और उनकी यात्राओं के बारे में बारीकी से जानकारी लिखी है, और उनके वर्णनों से पता चलता है कि इन महाराजाओं की जीवन शैली में कितनी भरपूरता थी, और वह भी 20वीं सदी में। उसने 100 साल पहले शरीर छोड़ा, ज्यादा समय नहीं हुआ, और मैं यह देखती हूँ कि 5000 वर्ष के बाद भी यह महाराजाएं कितनी समृद्धि के साथ रहते थे। इससे स्वर्णिम युग की एक झलक समझ में आती है। मूल्यों में से भी मुझे स्वर्णिम युग के ज्यादातर वर्णनों से स्पष्ट अनुभूति होती है, क्योंकि महलों के अंदर के जीवन से तो मैं परिचित हूँ। महल से बाहर उस समय थोड़ी सी लोक संख्या थी। मूल्य में यह भी संकेत दिए हैं कि स्वर्णिम युग में सभी बहुत खुशी में होंगे, कोई भी चीज की कमी नहीं होगी और सभी एक जैसे अपनेपन की भावना में रहेंगे, ना कि मालिकपन के। स्वर्णिम युग में जीवन कैसे होगा और वहाँ की सामाजिक संरचना कैसी होगी, इसकी स्पष्टता नहीं है। शुरुआत में जब मैं ज्ञान में चल पड़ी थी तो मुझमें बहुत अबोधता थी और परिपक्वता की कमी थी, और स्वर्णिम युग जैसे कि एक परिकथा थी। अब इस स्वर्णिम युग मेरे लिए इस समय एक ज्यादा ही सुस्पष्ट वास्तविकता है और वह बहुत सूक्ष्म है। उसमें ज्यादा करके गुणों की और एकता की बातें हैं और मैं समझती हूँ कि ये बातें ही ज्यादा करके स्वर्णिम युग का विवरण करती हैं। एरिक भाई, क्या आप थोड़ा और वर्णन कर सकती हैं कि अभी आप वर्तमान में स्वर्णिम युग से कैसी जुड़ी हैं? आप गुणों के बारे में बोल रही हैं, स्वर्णिम युग में एकता और मूल्यों के बारे में बात कर रही हैं। दृष्टि से सृष्टि कार्यक्रम की संकल्पना ही यह है कि हमारी दृष्टि हम इतनी स्पष्ट रखें कि हमें पता रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपके लिए यह दृष्टि की स्पष्टता का कितना महत्व है और आपके लिए वर्तमान में इसका क्या विस्तार है? आपका क्या दृष्टांत है भविष्य के लिए जिसे हम स्वर्णिम युग कहते हैं, लेकिन आपके लिए यह सिर्फ एक नई दुनिया या स्वर्ग है? इस क्षण आपका क्या दृष्टांत है लुसियाना बहन? आज के समय में मेरे जीवन में स्वर्णिम युग की एक अहम भूमिका है, क्योंकि सारे विश्व की परिस्थितियां और संकट अभी निकट भविष्य में ठीक होंगी ऐसा नहीं लगता, इसलिए यह नई दुनिया की संकल्पना हमें प्रेरणा देती है कि हम मायूस न हो और अपने भविष्य के प्रति आश रखें। वैसे भी विनाश के बाद सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जलवायु बदल जाएंगे, जो कुछ भी आप कहो, क्योंकि हर रोज हमारे ऊपर मीडिया द्वारा बुरी खबरों की बौछार होती रहती है। इसलिए स्वर्णिम युग की बातें मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी लगती हैं। जैसे मैंने बताया कि एक स्पष्ट भावना महसूस होती है कि ऐसी एक दुनिया का अस्तित्व होगा जहां समन्वय का वास होगा, और मुझे लगता है कि समन्वय सबसे उत्तम शब्द है वहां का वर्णन करने के लिए। आत्माओं के बीच में आपस में समन्वय, प्रकृति और आत्माओं के बीच में समन्वय, अभी मेरे लिए और ज्यादातर पश्चिमात्य देशों के लोगों के लिए स्वर्णिम युग का मतलब ये नहीं है कि महल माड़ियां हो, धनाढ्यता हो, नित्य उत्सव हो, विमान हो, ये नहीं, परंतु मेरे लिए वह एक प्रकार की रम्यता है जिसे हम रॉयल्टी भी कहते हैं। परंतु मुझे लगता है कि स्वर्णिम युग में हम बिल्कुल उन्हीं गुणों को व्यक्त करेंगे जो अभी हम प्राप्त कर रहे हैं राजयोग ट्रेनिंग द्वारा, क्योंकि यह ऐसे है जैसे कि हमें नतीजा दिखाई देगा हमारी पढ़ाई का, और हम जो कुछ अभ्यास कर रहे हैं उसका, और मेरे लिए यह बहुत ही बड़ा अनुभव और समझ है कि अब संगम युग में यह प्रभुत्व हम प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सारी पढ़ाई और मेडिटेशन का अभ्यास स्वामित्व प्राप्त करने के लिए है, बेशक पहले अपने आप के ऊपर। मेरे लिए स्वामित्व की बहुत सुंदर परिभाषा है। स्वामित्व मेरे लिए स्वतंत्रता है। मैं समझती हूँ कि जब हम अपने आप पर स्वामित्व प्राप्त करते हैं तब हम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। ये ठीक है कि हम खुश होने वाले हैं, शीतल और शांत होने वाले हैं, परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भूतकाल की सब चिंताओं और तनाव से और किसी भी प्रभाव से मुक्त होने वाले हैं। तो मैं इस स्वर्ग को देख रही हूँ कि इसमें हम सबसे पहले अपने मन के मालिक बनेंगे, अपने शरीर के मालिक बनेंगे और अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बनेंगे। वहां किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं होंगी और बड़ा सहज विनीत भाव और लावण्य होंगे। बाबा कई बार जिक्र करते हैं कि हम स्वर्णिम युग में कैसे प्राकृतिक रूप से खूबसूरत होंगे। बेशक वह सुंदरता शरीर की होगी, लेकिन विशेष करके होंगे हम जानते हैं आंखों के अनुग्रह भरे हाव भाव और अनुग्रह भरे इशारे और अनुग्रह भरी चलन समाज में भी समन्वय होगा और यह मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये बात संगठन से संबंध रखती है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप से, अपनी आत्मा से और अपने आध्यात्मिक विकास में भ्रमित या धोखे में न रहूं। हम सभी संस्थान का एक भाग है और इसके कारण हमें ध्यान रखना होगा कि हम संस्थागत न बन जाएं, परंतु उसी समय संगठन का भाग होने के नाते हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है सामाजिक भावना को विकसित करना, जो स्वर्णिम युग में एकदम परिपूर्ण होंगी। स्वर्णिम युग में वैयक्तिकता और संगठन का हिस्सा बनकर रहना, इन दोनों का सही संतुलन होगा। उनकी आपस में एकता की भावना होगी, जैसे बाबा वर्णन करते हैं कि संगम युग पर हमें लगता है कि एक की गलती माना सबकी गलती। बेशक वहाँ गलतियाँ नहीं होंगी, परंतु ऐसी भावना जरूर रहेंगी। मुझे यह भी लगता है कि वहाँ जुदाई नहीं होंगी, हमारी अपनी मर्यादाएं और आपस में मर्यादाओं में सरलता होगी। वहाँ सब कुछ सूक्ष्म होगा तरंगों के भाव में, यहाँ जैसे इतना स्थूल नहीं होगा। अभी हम यहाँ इतनी मेहनत करेंगे स्वयं को जागृत करने की कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। वास्तव में मुझे लगता है स्वर्णिम युग में शरीर एक प्राकृतिक विस्तार होगा आत्मा का, और यहाँ प्यार और वैराग्य का संतुलन होगा और इसका रिजल्ट नतीजा होगा कि हम सभी आपस में एक दूसरे की देखभाल करेंगे, आपस में बांट लेंगे, उदारता होगी और सुशीलता का भाव होगा। इस तरीके से मैं दृश्य बनाती हूँ। मालिक होने का दूसरा पहलू यह है कि अब हम अभ्यास कर रहे हैं ताकि स्वर्णिम युग में हम समय पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे। स्वर्णिम युग में कोई भी बात किसी पर थोपी नहीं जाएंगी, और मैं स्वयं पर इसके लिए बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि कई बार मैं थोपने लग जाती हूँ। तो स्वर्णिम युग में ऐसा सब अस्तित्व में होगा ही नहीं, वहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होगी, वहाँ पहले या बाद में ये शब्द नहीं होंगे। हर बात अपने समय पर होगी, जैसे एक परिपूर्ण समन्वय हो। एरिक भाई, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें इस बात में रुचि है कि वर्तमान में हम जहाँ हैं, वहाँ से भविष्य में हम कैसे पहुँचेंगे। आपने समन्वय के विषय को भी उठाया है कि समाज के साथ समन्वय और संगठन के साथ संबंध, तो आपको क्या लगता है हम कहाँ तक उस प्रकार की एकता तक पहुँच पाए हैं, उस समन्वयता तक पहुँचने पाए हैं? हमें क्या कार्य करना पड़ेगा उस स्थिति तक पहुँचने के लिए? अभी हम कहाँ पर हैं? और इसके बाद मेरा प्रश्न रहेगा कि वास्तव में आगे बढ़ने से वो क्या चीज है जो हमें रोक रही है। लुसियाना बहन, ठीक है, मैं ईमानदारी से कहूंगी कि मैं बहुत सावधान रहती हूँ कि कोई बात अस्पष्ट न रहे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सभी एक जैसी स्थिति में है। परंतु आमतौर पर मैं एक व्यापक चित्र लेती हूँ ब्राह्मण परिवार का, तो मुझे लगता है कि बहुत बीके सोचते हैं कि उनके स्वर्णिम युग में जाने के पासपोर्ट बन चुके हैं, गारंटी है, क्योंकि हमें बाबा में श्रद्धा है, मुरली नियमित सुनते हैं, मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते हैं। परंतु ईमानदारी से कहूं, मुझे नहीं लगता कि इतना पर्याप्त है। किसी की आलोचना करे बगैर मैं कहूंगी कि यह आध्यात्मिक तंतु जो एक परिपक्व दुनिया बनाने के लिए चाहिए वह अभी तक ब्राह्मण परिवार में दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि स्वर्णिम युग को आने में 40,000 वर्ष बाकी है। ब्राह्मण कम्युनिटी की स्थिति देखते हुए परंतु हम जानते हैं ऐसा नहीं है, तो कुछ घटना निश्चित ही घटनी चाहिए ताकि हम जोर पकड़े। वो क्या होगी मैं नहीं जानती। हम ये सब अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं अंदर, वो एक दिन अचानक ही निकल आएगा। मुझे नहीं पता ये कब होना है, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। मुझे नहीं पता, जब मैं मधुबन जाती हूँ और मैं देखती हूँ पूरी ब्राह्मण समाज को, तब मुझे नहीं लगता कि हम संगम स्वर्णिम युग तक पहुँच पाएंगे इतना जल्दी। एरिक भाई, कोई संकेत बताइए मुख्य रुकावट क्या हो सकती है? बेशक देहभान और माया और रावण और उसकी पूरी पलटन है, परंतु कुछ तो एक संकेत होगा जिस पर हम कार्य करके स्वर्णिम युग तक पहुँचेंगे। लुसियाना बहन, मैं सोचती हूँ कि स्वर्णिम युग के अनुभव से हमें दूर रखने वाला कारण है मैं और मेरापन। हम मुक्त आत्माओं की तरह उड़ नहीं रहे हैं। ब्राह्मणों के संस्कारों और व्यक्तित्व के संघर्ष के कारण ब्राह्मणों की आध्यात्मिक अवस्था में बहुत हलचल हम देखते हैं। इसके अलावा कई सारे नकाब भी कार्य करते हैं। सेवा का खेल औरों का फायदा कराने के शुद्ध इरादों से नहीं खेला जा रहा है। मैं अपने आप का विश्लेषण करती हूँ, क्योंकि सेवा को बहुत बार करियर कारकिर्दी के रूप में खेला जाता है या सफलता पाने के मकसद से किया जाता है, परंतु मनसा सेवा गुम हो गई है। इसलिए मुझे लगता है सेवा एक बंधन है। सेवा तो एक उड़ान भरने का तख्ता बनाना चाहिए। तख्ता बनाने के बजाय हम रोल कॉन्शियस या भूमिका प्रधान बन जाते हैं। तो यही दो मुख्य बातें हैं जो हमारे फरिश्ता स्वरूप को छुपा रहे हैं देवता बनने से पहले। एरिक भाई, इसके पहले जो आपने कहा उस पर चिंतन करें। एक आखिरी छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। आप यह उल्लेख कर रहे थे कि यह जरूरी है कि सारे समाज में समन्वय लाने के लिए हमें संस्थागत नहीं बनना चाहिए। तो संस्थागत नहीं होना और अपनी मुक्त आत्मा अवस्था रखना, इसका मतलब समझाएं। आपकी व्यक्तिगत धारणा, व्यक्तिगत पुरुषार्थ, व्यक्तिगत जागरूकता, इसके लिए क्या है? लुसियाना बहन, मुझे लगता है संस्थागत होना माना अपने जीवन में बीके की भूमिका लाना। तो हम बीके की तरह सोचने लगते हैं, बीके की तरह कार्य करते हैं, बीके की जो बातें हैं वही पसंद करते हैं। ये तो एक अल्पकालिक स्थिति है, हम उसी पर ध्यान केंद्रित करके नहीं बैठ सकते। मैं बीके होने के नाते यह किरदार अदा कर सकती हूँ जो बाबा मुझे सिखाते हैं, क्योंकि बाबा के लिए मुझे सम्मान है, संगठन के लिए सम्मान है। परंतु जब हम भूमिका प्रधान बन जाते हैं तब हम अटक जाते हैं और मुझे बीके ढांचे की सारी बातें जरूर करनी पड़ती है। फिर वो मान्यता, वो बैज, वो कपड़े, वही बाहरी आवरण हमारी परिभाषा करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारी स्थिति, हमारे गुण, धारणाओं से हमारा ध्यान हटता जाता है। जिस उद्देश्य और जागृति के साथ हम बीके जीवन बिता रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। इस वर्ष दो बहुत ही दिलचस्प शिक्षण सत्रों में जाना पड़ा। एक था पेरिस के फ्रांसवा भाई का, जो कुछ शंकर स्थिति, तो सब कुछ शंकर स्थिति पर था। तो हम शंकर स्थिति को अनुभव करने के लिए उस विषय में चर्चा कर रहे थे। कहने का मतलब है, ब्राह्मण के किरदार की मर्यादाओं का भी एक दिन क्षय होगा। दूसरा रोचक शिक्षा सत्र लेबनान की अनातोलिया का था। उसने जोर दिया ड्रामा को छोटा बनाने पर, और संस्थागत पात्र व दृष्टिकोण व जागृति ड्रामा को बड़ा कर देती है। इसलिए ड्रामा में जो कुछ भी होता है या ड्रामा में जो कुछ आपको मिलता है, वह सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतीत होती है, और हम अनंत काल का दृष्टिकोण खो देते हैं। मुझे यही कहना था। एरिक भाई, धन्यवाद, बहुत सुंदर। लुसियाना बहन, हमें स्वर्णिम युग के बारे में सोचने के लिए और तैयारी करने के लिए काफी कुछ खुराक मिली है। क्यों ना कुछ क्षणों के लिए मनन करें कुछ संकल्पों पर, जिनमें स्वर्णिम युग के बारे में, वहां की स्थिति के बारे में स्मृति आ जाए और हम मुक्त आत्मा स्थिति का अनुभव कर सकें।
Awareness of golden age, the state of golden age, this free spirit that you are referring to. Let's have maybe a little contemplation.
Luciana Ben, zarur.
So, I see myself.
मैं अपने आप को
in my future form,
भविष्य स्वरूप में देख रही हूँ.
The beautiful image created by the divine sculptor.
यह खूबसूरत मूर्ति उस दैवी शिल्पकार ने निर्माण की है। मैं देख रही हूँ, मेरा चेहरा चमक रहा है, मुलायम सी रचना है, मेरी आंखों से बुद्धिमत्ता और भोलापन अभिव्यक्त हो रहे हैं। मेरी आंखों से मैं संचारण करती हूँ।
No need to explain,
कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं,
and convince others,
कोई यकीन दिलाने की जरूरत नहीं,
are self-aware,
सभी आत्म जागृत हैं,
self-controlled masters,
और स्वनियंत्रित स्वामी हैं,
words, spoken like,
बहुत थोड़े शब्द बोले जाते हैं, दुर्लभ खजानों की तरह, कानों को सुख देने के लिए और दिल को हर्षाने के लिए। मैं गहरी सांस लेते हुए हवा को महसूस करती हूँ, तो मेरी आत्मा को
No separation,
मेरे शरीर से जोड़ती है।
oneness,
हवा एक सूक्ष्म पुल की तरह है, कोई जुदाई नहीं,
figure,
कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ एकता है।
and weight,
मैं अपने सुंदर आकृति को देखती हूँ, रूप और प्रभाव में हल्की,
as in a dance, and we all
मेरे हाव भाव सौम्य है और नाजुक है, एक नृत्य की तरह, और हम सब सम्मान और विश्वास के साथ आपस में व्यवहार में आते हैं। किसी भी रूप या मामले में हम कोई दूसरा रास्ता जानते ही नहीं। तुम मैं हूं और मैं तुम हो, यही एकता है। समय ठहर जाता है और मैं अवलोकन करती हूँ, मैं देखती हूँ प्रकृति अपनी भरपूरता में है। वास्तुकला साधारण प्रतीत होती है क्योंकि सृष्टि संपूर्ण शानदार है। प्रकृति मेरा विस्तृत रूप लगती है, वही एकता है। सब कुछ अपने रंग, चमक और गुणवत्ता में परिपूर्ण है। कुछ भी कम या ज्यादा नहीं है। समन्वय और व्यवस्था चारों ओर है। स्वर्ग मेरे शुद्ध अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति।